श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। यहाँ पे उत्क्रामन्तं का अर्थ है शरीर त्यागते हुए, स्थितं मतलब शरीर में रहते हुए, वा अपि अथवा भुंजानाम मतलब भोग करते हुए, वा अथवा गुणान्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन, विमूढ़ ना मूर्ख व्यक्ति, ना मतलब नहीं, अनुपश्यन्ति मतलब देख सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं, ज्ञान चक्षुषा मतलब ज्ञान रूपी आंखों वाले। तो हमने इसके शब्दों को विचार करें तो देखेंगे उत्क्रामंतम मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं देख पाते कि किस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर को त्यागता है, और जब वह स्थितम अर्थात जब वह इस शरीर में रह रहा है, जब हम लोग जी रहे हैं, जब हम लोग अपने एक शरीर विशेष शरीर में रह रहे हैं, तो उस समय किस प्रकार से गुणों के अधीन रहकर वह शरीर हम लोग शरीर को भोग रहे हैं। हमें लगता है और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, जो मेरे मन में आता है वह मैं करता हूं, लेकिन वो एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे मन में क्या आता है और क्यों आता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार जो उनका स्वभाव है, जो वासनाएं हैं, उनका उपयोग करके, इच्छाओं का उपयोग करके प्रकृति के गुणों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है और उसके अधीन होकर के ही हम कार्य कर रहे हैं। और व्यक्ति सोचता है कि वो स्वतंत्र है, तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं बावजूद उसके कि वो हर क्षण प्रकृति के गुणों के अधीन है। लेकिन हाँ, और एक और बात इंपॉर्टेंट है, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, अनु मतलब लगातार, पश्यन्ति मतलब देखता देखना, तो न अनुपश्यन्ति मतलब लगातार कभी भी नहीं देख पाते, प्रायः लगातार अंधे ही रहते हैं, इस बात को नहीं देख पाते हैं कि हम लोग जो बद्धात्मा है वो प्रकृति के अधीन है। जैसे मान लीजिए किसी को नींद आ रही है तो सोचेगा हाँ मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ पाएगा कि नहीं, ये तमोगुण का प्रभाव मेरे चित्त पे हो रहा है और अगर आवश्यक नहीं है तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं अपना कार्य करूंगा। तो या मान लीजिए सोना भी हो तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ पाएगा कि अभी शरीर पे तमोगुण का प्रभाव है, मुझे यथा आवश्यक जो है शरीर को सुख देना, सुख नहीं कहना चाहिए, शरीर को सुला देना चाहिए ताकि मैं आगे जाके कुछ कार्य कर पाऊं ठीक प्रकार से। तो किस प्रकार से गुण हम पर धावी हो रहे हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो देख पाते हैं। ज्ञान चक्षुषा का अर्थ है शास्त्रों से सुन करके, साधुओं का संग करके व्यक्ति ज्ञान को डेवलप करता है और वस्तुओं को वैसे देखता है जैसे शास्त्र का वर्णन है, जैसे साधुओं का वर्णन है, जैसे साधु समझाते हैं, शास्त्र समझाता है, उसके अनुसार वह जगत को देखता है। इस संबंध में समझ लेना चाहिए उदाहरण, उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपकी कार खराब हो जाए तो आप देख रहे हैं कि कार खराब हो गई है, लेकिन आपके देखने की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कार को ठीक कैसे किया जाए। लेकिन एक मैकेनिक है जो कि ट्रेनिंग प्राप्त है तो वो भी कार को देखता है और देखता है कि खराब है, लेकिन वो ये अंतर कर पाता है कि उसमें वो जानता है कि कार में क्या खराबी है और उसे कैसे ठीक किया जाए। तो उसी स्थिति को देखना में अंतर पड़ जाता है अगर व्यक्ति की ट्रेनिंग है या नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है विमूढ़ नानुपश्यन्ति, जिन्होंने शास्त्र नहीं सुना है, भक्तों का संग नहीं किया है, वो कभी नहीं समझ पाते और जीवात्मा की स्थिति शरीर में। लेकिन जो व्यक्ति कंट्रोल किया रहता है अपने जीवन में कुछ संयम है और शास्त्र का ज्ञान है तो समझ पाता है कि हम लोग किस प्रकार से इस जगत में बंधे हुए हैं। अनुवाद, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, कर सकता है, त्याग सकता है, नहीं वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी जिसकी आंखें ज्ञान से में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आइए जरा हम बलदेव विद्याभूषण की टीका को देखें। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है वह जीव का अनुभव नहीं कर पाता है, बावजूद इसके कि उसके अंदर शक्ति होती है क्योंकि वह शरीर में ही स्थित रहता है। शरीर में स्थित होते हुए भी और शरीर से भिन्न होते हुए भी और ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण होते हुए भी जिसके पास विवेक नहीं है वह समझ नहीं पाता। मैं आपका बात इस बात पर ध्यान रखना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान शक्ति का अर्थ है ये अनुभव करने की शक्ति कि मैं हूं और मैं अन्यों से भिन्न हूं, तो कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, क्योंकि हम अपनी आंख नहीं है, अपनी नाक नहीं है, अपने चेहरे नहीं है, अपने हाथ नहीं है, तो इसलिए हम लोग शरीर में हैं, हम लोग शरीर नहीं है। तो इस ज्ञान शक्ति को होने के बावजूद भी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि संतों का संग नहीं मिलता, भक्तों का संग नहीं मिलता, और इस कारण से उसका विवेक पनपता नहीं है। तो विवेकहीनता के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो आत्मा शरीर को त्यागता है या फिर शरीर में रहता है, और जब शरीर में रहता है तो इंद्रिय विषयों को वह भोगता है और अपने इंद्रियों को सुख दुख और मोह के अनुभव में प्रयोग करता है। इंद्रियों का के द्वारा जब वो इंद्रिय विषयों का भोग करता है तो या तो सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है और या फिर मोह उत्पन्न होता है, और इसी को बोला है वो गुणान्वितम, मतलब गुणों के द्वारा अधीन होने के कारण व्यक्ति जब इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होता है, इंद्रिय विषयों का भोग करता है, तो व्यक्ति इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है। तो जो मूर्ख लोग हैं वह आत्मा को समझ नहीं पाते, बावजूद इसके कि वो समझ सकते हैं अगर वो तपस्या करें, भक्ति करें, लेकिन क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को खाली इंद्रिय विषयों में लगाने में लगे रहते हैं, इसलिए इस तथा कहते सुख दुख और मोह के जंजाल में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का जो नेत्र हैं या जिसका ज्ञान जो है, वो ज्ञान के द्वारा उसके नेत्र के ट्रेनिंग प्राप्त है, अर्थात देखने की दृष्टि उसकी बन गई है, शास्त्र सुन करके, भक्तों का संग करके, वह समझ सकता है आत्मा की स्थिति को शरीर में। और वो किस प्रकार से देखते हैं, वो देख पाते हैं कि किस प्रकार से आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और न ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। कहने का अर्थ देखिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छी पॉइंट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्राय लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी खत्म हो गए। खत्म नहीं हो गए हैं, वो दूसरे स्थान पर चले गए हैं। आत्मा जिस प्रकार से इस शरीर को में कई बार परिवर्तन किया है, उसी प्रकार से आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर को धारण करती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो जो मूर्ख व्यक्ति वो नहीं समझ पाता है, और ये भी नहीं समझ पाता है कि इस जीवन में कौन से कार्य करने से उसे कौन सा शरीर प्राप्त होगा। तो भगवद गीता सुनने से आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुणी लोग हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वो मनुष्यों के बीच में जन्म पाते हैं, और तमोगुणी लोग जानवर में का जन्म प्राप्त करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के धाम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से कौन व्यक्ति कौन सा कर्म करने से आगे कौन सा शरीर धारण करेगा, मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। तो मूर्ख मतलब ये मत सोचेगा जो अनपढ़ है, मूर्ख मतलब जो पीएचडी किया हुआ है वो भी मूर्ख ही है, क्योंकि इस ज्ञान से वो रहित है, वो उसको भी मरना है, और किस प्रकार से जगत को भोग कर रहा है उसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए कहेंगे कि पीएचडी वाला व्यक्ति भी मूर्ख ही है, क्योंकि उसने भगवान के विषय में और अपने आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुन करके समझा जा सकता है। देखिए, यही बातों को बता रहा था कि केवल ग्रंथ से नहीं होता है, ग्रंथ के साथ साथ उस ग्रंथ को समझाने वाला साधु होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, जो इस ग्रंथ की समझावट को परंपरा में स्वीकार किया हो, तभी हम इस ग्रंथ को, भगवद गीता को समझ सकते हैं। नहीं तो अभी मेरे को कुछ फीडबैक मिला कि जो इन गीता के प्रवचनों को सुन रहे हैं और नए लोग हैं, उन्हें मेरे प्रवचन समझ में नहीं आते। तो क्या कारण है ना समझ में आने का? यही कारण है, क्योंकि इंद्रियां भोगों में लगी हुई हैं, जीवन में तपस्या नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते, भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। जब प्रसाद ग्रहण करके, हरि नाम जप करके हमारी चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो मेरी बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। और ये कोई मेरी बात नहीं है, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, आचार्य जो गण बोल रहे हैं, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है बात, लेकिन हमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वह भाग्यशाली हैं। इस प्रशिक्षण में बहुत जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध करें। अशुद्ध मन से भगवद गीता की बातें सुनने के बाद भी समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए प्रशिक्षण जरूरी है। कैसे हम अपने इंद्रियों को शुद्ध करें, और इंद्रियों का शुद्ध होना शुरू होता है श्रवण से। हम श्रवण के द्वारा सीखते हैं कैसे भगवान का नाम जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और इस प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, और फिर भगवान की बात समझ में आती है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। मतलब कोई व्यक्ति घोर तमोगुणी होगा तो तमोगुण का ही संग करेगा अगले जीवन में, कोई रजोगुणी होगा तो रजोगुण का संग करेगा, सत्वगुणी होगा तो सत्वगुण का संग करेगा, और भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो आगे जाके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। तो ये ज्ञान चक्षु, शास्त्र के चक्षु को विकसित किया है वो व्यक्ति देख पाता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। लोग सोचते हैं कि भाई जगत में दुख है और इंद्रिय भोग करके, इंद्रियों को विषय को भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वस्तुतः उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, वो केवल मन के स्तर पर रहता है। तो ऐसा व्यक्ति इस भ्रम में कि इंद्रिय भोग के द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। बहुत अद्भुत बात है। बहुत बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन में या साधु लोग जो है बहुत कठोर बोलते हैं, इंद्रिय विषयों को भोगने के बारे में के विरुद्ध क्यों बोलते हैं, लेकिन देखिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को जुखाम है तो जुखाम तो है, लेकिन अगर वो चावल खाएगा, दूध पिएगा तो उसका जुखाम बढ़ जाएगा। तो वैद्य को बताना होता है कि आप चावल और दूध ना खाएं, केला ना खाएं, इससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, और ऐसी वस्तु भी खाएं जिससे आपका कफ कटे। तो अब बताइए क्या ये कठोर हुआ बोलना? ये सत्य होता है बोलना। अब हम वैसे ही पहले से अविद्या से ग्रसित हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। अब ऐसे कार्य करना जिससे हमें और विस्मृति हो, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए यहाँ प्रभात समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा काम और इच्छा के द्वारा निरंतर मूर्ख बनता है, वह आत्मा को शरीर से पृथक नहीं समझ पाता। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। मतलब किस प्रकार से कुत्ते के शरीर में वही आत्मा है जो एक निम्न चेतना को धारण करके कुत्ते के रूप में भोग रही है, एक देवता या एक राजा के जो जीवन में जो शरीर में जो आत्मा है वह रजोगुण का संग करके राजा के कारण राजा की तरह वो सुख तथाकथित भौतिक सुख प्राप्त कर रही है, और देवता लोग सतोगुण का संग करके सतोगुण में भोग रहे हैं, लेकिन आत्मा शरीर से भिन्न है। इस चीज को जो ज्ञानी व्यक्ति समझ पाता है, ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोगना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रायः लोग यही नहीं सोचते हैं कि वो दुख भोग रहे हैं, और या फिर वो सोचते हैं कि दुख भोग रहे हैं तो मैं अकेले थोड़ा ना भोग रहा हूं, तो दिक्कत क्या है, सभी लोग भोग रहे हैं और कोई सोल्यूशन तो है नहीं उसका, तो इसलिए भोगते रहते हैं और उसके बीच में थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है उसको हम लोग सुख मान करके संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम कभी बार बहुत बार लोगों को बोलते हैं कि आप मरोगे, तो कहते हैं हम अकेले थोड़ा ना मरने वाले हैं, सभी लोग मरते हैं, हम भी मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो यार जब तक सब लोगों को दुख प्राप्त हो रहा है तब तक मुझे अपना दुख सहने करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई बुद्धिमानी है? बताइए, सब लोग बीमार हैं तो क्या आप ठीक हो गए? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं कि भाई हम आप बीमार हैं तो चलो मैं बोल दूं मैं भी बीमार हूं तो उससे आपकी बीमारी थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस मोह से मुक्त रहता है, वो समझता है कि जगत दुख का घर है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी हम तो देखते हैं बंदर होता है, कुत्ता होता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। पर्टिकुलरली आप देखेंगे विशेष रूप से कुत्तों की कोई खुजली हो जाती है, बीमारी लग जाती है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी बुरी स्थिति होती है, फिर भी कुत्ता दुख भोगता है, लेकिन कभी ये प्रश्न नहीं करता कि मैं ये दुख भोग क्यों रहा हूँ। इसी प्रकार से जगत में लोग दुख भोग रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो लोग दुखी हैं, और इसकी निवृत्ति कृष्ण भावना के द्वारा हो जाएगी ये तो किसी को आइडिया ही नहीं है। तो इसी कारण से भक्त लोग प्रयास करते हैं और लोगों को ये ज्ञान देते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी मानवता के कार्य हो रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भावना ही है, कि कृष्ण भावना के द्वारा ही व्यक्ति के दुखों का निर्मूलन हो सकता है। बाकी सब लोग जो है केवल लेप लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावना के द्वारा ही व्यक्ति संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। उन्हें इसमें से निकालकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। अर्थात जब कोई भगवान का भक्त उसे भगवत संदेश दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वैद्य है और एक बड़ी अच्छी दवा बता रहा है तो थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन अगर मेरी कोई जानलेवा बीमारी है तो उससे अगर निजात मिल जाता है तो व्यक्ति को निजात प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प रहना चाहिए और उसको करना चाहिए, तब वो सीख पाएगा। यानी कि जिस प्रकार से भक्त को ट्रेनिंग प्राप्त होकर के उसे देख पा रहा है, तो अगर उस भक्त के मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे तो हम भी देख पाएंगे जीवन की सत्यता और जीवन के सच्चे उद्देश्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा।